Hare Krishna, Sunday Love Feast in Dwarka, New Delhi. Topic Aisi Vani Boliye, Kya Main Bolu? On 11th October 2015, given by myself, Prashant Mukund Das.
आज के समय में भी ये प्रभु जी से जो इस समय इस कम्युनिटी में जुड़े हुए बहुत से भक्त हैं और जैसे भी बताया गया है जुड़ने में बहुत सी चाबियां हैं जुड़ने के लिए बहुत सी चाबियां हैं तो प्रभुपाद बताते थे कि एक चाबी उत्साह की है प्रभु जी के अंदर इतना उत्साह है कि उत्साह के द्वारा ही ऑटोमेटिकली जो है लोग खींचे आते हैं अपना उत्साह है और प्रभु जी इज वेल नोन फॉर हिज बेसिकली इंग्लिश में नहीं हिंदी में क्या कहेंगे नाटक प्ले जो कि स्पिरिचुअल प्लेस तो जो कि बहुत वंडरफुल तरीके से जो नया व्यक्ति भी है उसको कैसे एंगेज करना है वेरी मच लाइक प्रभु जी का इतना क्लासिक है और साथ साथ हम देख सकते हैं भक्त की पहचान कैसे होती है कि वो कितने भक्त बनाता है तो हम देख सकते हैं कि प्रभु जी ने इस प्रोजेक्ट को जो यहाँ पे आके एक्टिवली जो प्रभु जी ने कॉन्ट्रीब्यूट करना शुरू किया लगभग जो मैं एक्टिवली जो देख पाया 6 महीने से उस प्रकार से जो प्रीचिंग में इन्वॉल्व हुए प्रभु जी उस प्रीचिंग में इन्वॉल्व होते होते आज प्रभु जी के साथ जो कि हमारे यहाँ आश्रय ग्रुप चलते हैं आश्रय मतलब जो सेंटर दिया जाता है भक्त के संरक्षण में रहकर भक्ति करने का प्रयास किया जाता है तो आज प्रभु जी के साथ बहुत ही ज्यादा 100 से ऊपर भक्त हैं जो कि प्रभु जी के ग्रुप में है जो कि प्रभु जी गाइड कर रहे हैं उनको तो ये उत्साह एक पूंजी है पर बताया जाता है जो प्रचार की शैली और भक्त जोड़ने का दोनों का बहुत बड़ा लिंक है तो हम देख सकते हैं कितने विशेष 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 भक्त के बीच में हम बैठे हैं इसके साथ साथ जो हमारे मंदिर में फंड कलेक्शन हिंदी में जिसे हम कहते हैं दान उसमें भी जो है प्रभु जी वन ऑफ द टॉप लाइन डोनेशन कलेक्टर्स में से तो हम देख सकते हैं हमारे बीच में विशेष प्रवक्ता है तो मेरा आप लोगों से निवेदन है अगर हम इनके उसमें अटेंशन देना चाहेंगे तो सबसे पहले जो हमारी अटेंशन को खराब करने वाली चीज है वो क्या है
मोबाइल
देखिए हम सब जानते हैं
हरी वो
मोबाइल फोन को साइलेंट पे या स्विच ऑफ कर लेंगे और उसका दूसरी चीज जो है तंग करती है वो क्या है
बच्चे
देखिए सबको मालूम है तो बच्चों के लिए व्यवस्था करी गई है जो माता पिता बच्चों को लेके उनको प्रसाद भाव में भेज दीजिए और आज का जो विशेष टॉपिक है वो क्या है ऐसी वाणी बोलिए क्या मैं बोलूं बोर्ड पे लिखा है तो बोलना आपको नहीं है बोलना प्रभु जी का है तो बताएंगे कि कैसी वाणी बोलनी है और क्या बोलना है तो हम प्रभु जी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करेंगे बहुत उत्साह के साथ बाय चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे थैंक यू रुचि सरन प्रभु जी हरे कृष्णा यू ग्लोरीफाइड मी टू मच हरे कृष्णा तो आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में तो अभी हम पहले थोड़ा सा कीर्तन करेंगे और उसके बाद में फिर आज का विशेष जो टॉपिक है शीर्षक है ऐसी वाणी बोलिए उस पर हम चर्चा करेंगे तो सभी लोग कीर्तन में साथ दीजिएगा कहते हैं जो व्यक्ति कीर्तन में ताली बजाता है उस व्यक्ति के पाप रूपी पक्षी उड़ जाते हैं और किसके पास जाते हैं हाँ जी जो नहीं बजाता हाँ जैसे पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी हो और उड़ाना हो तो क्या करते हैं कैसे उड़ाते हैं चिड़िया को ताली बजा के तो इसलिए अब हमें ताली बजानी है और अपने पाप रूपी पक्षी कहते हैं वो ताली बजाने से कंधे पे आकर बैठ जाते हैं और फिर उड़ जाते हैं भगवान के मंदिर में आने से कंधे पर तो आ गए अभी उड़ने को तैयार है अब जो नहीं बजाएंगे वो लेने को तैयार है जो बजाएंगे वो उड़ाने को तैयार है हरी वो
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी Thank you.
जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वन चारी यमुना तीरा वन चारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी बोलो जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो 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 हरे ताली बजाते रहिए हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो बोलो हरे कृष्णा जय श्री राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय राधा माधव जय रुक्मिणी द्वाकाधीश 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 रुक्मिणी जया जगन्नाथ जया बलदेवा सुभद्रा जया सुदर्शना जया जगन्नाथ जया बलदेवा सुभद्रा जया सुदर्शना जया गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जया जया प्रभुपाद जया जया प्रभुपाद जया प्रभुपाद जया श्रील प्रभुपाद जया जया प्रभुपाद जया प्रभुपाद जया प्रभुपाद जया श्रील प्रभुपाद नित्याय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्याय गौर हरि श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री पंच तत्व गौर निताय की पतित पावन श्रील प्रभुपाद की संडे लव फीस्ट कार्यक्रम की अनंत कोटि प्रकट वैष्णव भक्त वृंद की निताय निताय गौर हरि प्रेम आनंदे हरि हरि बो
हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। तो हम टॉपिक लेने से पहले भगवान के मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण आप अपने साथ में बोल सकते हैं, बोलिए ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति शब्दकान्तिकं वन्देहं श्री गुरुन् श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा। तो वो लोग जानते हैं क्या बोलने वाले हैं आज। टॉपिक तो मालूम है, ऐसी वाणी बोली है, लेकिन कैसी बोली है ये मालूम नहीं है। तो इसको बोलने के लिए हमको समझना चाहिए कि श्रील रूप गोस्वामी जो हमारे परंपरा के षट गोस्वामी वृंद जो कहे जाते हैं वृंदावन में विराजमान है, उनमें से सबसे अग्रज है रूप गोस्वामी। जानते हैं आप लोग रूप गोस्वामी सबसे अग्रज गोस्वामी। उन्होंने दो शास्त्रों की रचना करी मूल्यवान, जिनको श्रील प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया। कौन से दो शास्त्र हैं वो? लेक्चर ऑफ डिवोशन और दूसरा उपदेशामृत, लेक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड लेक्चर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत। तो जो उपदेशामृत है इसके अंदर 11 श्लोक है, ये श्री उपदेशामृत सिर्फ 11 श्लोकों की बुक, ओनली 11 श्लोकाज। और इसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस प्रकार से हैं कि व्यक्ति अगर इनको अपने जीवन में धारण करे तो वो क्या बन जाएगा? अमर। क्या बन जाएगा? अमर। वो फिर इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र में नहीं फंसता है। चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने जीवन में सिर्फ हमको 8 श्लोक दिए। कितने श्लोक दिए? उनको क्या कहा जाता है? शिष्टाष्टकम, शिष्टाष्टकम के रूप में 8 श्लोक हमें चैतन्य महाप्रभु ने दिए और रूप गोस्वामी ने हमें क्या दिए 11 श्लोक, कौन सी बुक में दिए? उपदेशामृत। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें जीवन में कम बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? लेकिन हम तो सबसे ज्यादा बोलते हैं कम बोलना चाहिए, और जब बोलें तो प्रभावशाली बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए? एकदम जब बोलें तो व्यक्ति उसको धारण करे। चेतन महाप्रभु ने पूरे विश्व का जीवन बदल दिया कितने श्लोकों से?
8।
और रूप गोस्वामी ने हमारा जीवन बदल दिया कितने श्लोकों से? 11। और हम बोलते रहते हैं पता नहीं हर संडे 1-2 घंटा, लेकिन आप लोगों का जीवन बदलने को तैयार। तो इसलिए कम बोले लेकिन प्रभावशाली बोले, और ज्यादा बोलेंगे तो प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए कहते हैं, अब कबीर दास जी ने एक दोहा कहा जिसके ऊपर हमें ये टाइटल समझ में आता है। क्या बोलते हैं? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। तो औरों को शीतल करे और खुद भी क्या हो जाए, और हम ऐसा डालते हैं सामने वाले को भी उबाल दे और खुद भी उबल जाए। हाँ ऐसी वाणी बोलते हैं, हाँ सारा सामने वाला पागल हो जाए। तो इस तरह की हमारी वाणी है।
हाँ
तो इसलिए हमें क्या करना है, अपनी वाणी का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों कर सकते हैं। सदुपयोग करते हैं तो लोग आपसे खींचे चले आते हैं, मिलने आते हैं। दुरुपयोग करते हैं तो फिर लोग आपसे दूर भागते हैं। अरे 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 बच के रहना, वो आ रहा है, अरे पता नहीं कब किस बात पे नाराज हो जाएगा, क्या बोलेगा समझ में नहीं आता। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों ने कबीर दास जी के दोहे को भी तोड़ दिया। जानते हैं क्या बोलते हैं? ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए, ऐसी वाणी बोलिए बोलिए ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए, उससे कभी ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। तो आपसे जो तगड़ा है, ताकतवर है, उससे जरा बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। रूपा जी के आम भक्त जो थे, उपदेशामृत जब ग्रंथ छपकर आया तो इसकी बहुत ही कम प्रतिलिपियां लेकर प्रभुपाद जी के पास पहुंचे और बोले प्रभुपाद आ गया है श्री उपदेशामृत। तो प्रभुपाद जी ने कहा बस 15-20 कॉपियां, अरे हमें तो प्रचार करना है। तो उनके भक्तों ने बोला कि अरे ये तो खाली उन भक्तों के लिए है जो मंदिर में अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, ये उनके लिए है जो अभी मंदिर के बारे में जानते नहीं कि मंदिर है क्या। तो इसलिए उसकी लाखों प्रतिलिपियां छापो, और उन्होंने अनेकों प्रतिलिपियां छाप कर पूरे विश्व में श्री उपदेशामृत का प्रचार किया। तो प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल हैं, उनका नाम है हिज होलीनेस हनुमंत प्रेक्षक स्वामी महाराज। वो महाराज अब भी चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, तो हमेशा उनके हाथ में एक ग्रंथ रहता है। कौन सा? अगर किसी सन्यासी के हाथ में ये बुक दिखे और आप उसका नाम नहीं जानते तो साम जी नाम जान लीजिएगा, इनका नाम है हिज होलीनेस हनुमंत प्रेषक स्वामी महाराज। क्योंकि वो कहते हैं कि 11 श्लोक तो बहुत दूर, अगर हमने इस बुक का पहला श्लोक अपने जीवन में धारण किया तो हमारे को भगवत धाम जाने से कोई नहीं। अरे भगवत धाम जाने की बात क्या छोड़ो, अगर 11 श्लोक में से एक श्लोक भी छोड़कर एक श्लोक का पहला शब्द भी अपने जीवन में धारण किया तो हमें भगवत धाम जाने से कोई नहीं। हरि वो ऐसा अनमोल ग्रंथ उपदेशामृत, इतनी पतली सी 50 रुपए की किताब कोई खरीदता ही नहीं है। सब लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, हाथ से पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या जीवन जीना है इसमें इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद जी ने और रूप गोस्वामी ने हमें दिए। तो इसका पहला इंस्ट्रक्शन, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसमें वो कहते हैं, साथ में बोलिए, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उधोर उपस्थ वेगम। तो इसमें 6 प्रकार के वेगों की चर्चा हुई है। पूरा श्लोक इस प्रकार से आप सुनिए, वाचो वेगम मन सक्रोध वेगम जीव वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेति धीरा सर्वम पियेवम पृथ्वी सशिष्यात। इसमें रूप गोस्वामी कहते हैं वही व्यक्ति संसार में भक्त बना सकता है, पृथ्वीम सशिष्यात, वही शिष्य पूरी पृथ्वी में बनाएगा जो ये 6 प्रकार की चीजों को कंट्रोल कर लेगा। तो उसमें 6 में सबसे पहला क्या है?
वाचो वेगम, अपने वचन का जो वेग है उसको कंट्रोल करना है। इसके पूरे श्लोक का अर्थ हम आपके लिए पढ़ते हैं, इसमें लिखा है अनुवाद में, वो धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रिया को तथा जीव उदर और जनेंद्रियों को वेगों को सहन कर सकता है, वे सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। जो ये छह प्रकार के वेगों को कंट्रोल कर सकता है वो पूरी पृथ्वी पर क्या बना सकता है, शिष्य बना सकता है। लेकिन हम वाचो वेग, हम मन का वेग और वचन का वेग तो क्या संभालेंगे, जिह्वा का वेग ही नहीं संभलता। कई कई भक्त जैसे अभी यहाँ है ना, तो कथा सुनने के साथ साथ उनकी गर्दन घूमती रहती है घड़ी की तरफ, उधर घड़ी लगी हुई है, घड़ी में देखते हैं कब 9 बजेंगे, कब ढक्कन खुलेगा, कब महाप्रसाद मिलेगा। तो कथा के दौरान जब समझ में आता है, जब भक्त आखिरी पड़ाव पे होते हैं भागवतम के या कीर्तन के, तो वो उच्चारण कर लेते हैं जय प्रभुपाद जय, तो सब भक्त खुश होते हैं, जोर जोर से क्यों नाचते हैं पता है, इसलिए नहीं कि प्रभुपाद जी का नाम आ गया, इसलिए कि खत्म हो गया, अब कीर्तन के बाद मिलेगा प्रसादम टाइम, इसलिए खुश होकर नाचते हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं, कुछ भक्त हमने देखे हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ही प्रभुपाद जी का नाम उच्चारण होता है वो अपने मन में उच्चारण शुरू कर देते हैं टेंपल हॉल से प्रसादम हॉल तक जाने के लिए। पता क्या बोलते हैं, महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णव, पहले ही बोल लेते हैं मन में। अब क्यों वहां जाकर बोलेंगे, तो टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए एक भक्त तो एडवांस डिवोटी थे, एडवांस समझते हैं, बहुत ही एडवांस भक्त, वो तो दो शब्दों में प्रेयर खत्म करते हैं प्रसादम की। पता क्या बोलते हैं, महाप्रसाद गोविंदे का पहला शब्द महा और इसका आखिरी शब्द है जय निमाय जय नेता है, तो वो बोलते हैं रुखा नहीं जरा महानेता ये। जीवा वेगम, जीव का वेग ऐसा है कि बस रुखा ही नहीं जाता, खाने पीने को मिले गुलाब जामुन जलेबी तो बस फिर व्यक्ति से कंट्रोल होता है क्या, कभी कंट्रोल नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा इन सबको, ये किसी से वेग कंट्रोल नहीं हो रहा, देखिए बच्चा है। तो उस तरह से प्रभुपाद ने कहा हमें अगर इंसान बनना है, हम क्या नहीं बनना, जानवर, तो हमको अपने वेगों को कंट्रोल करना चाहिए। वेग का एक और नाम होता है आसक्ति या अटैचमेंट। आसक्ति समझते हैं क्या होता है, सब लोग बच्चे को मत देखिए, कथा को सुनिए, बच्चा तो आपके घर में भी है। आसक्ति, आसक्ति का क्या मतलब है, अटैचमेंट, जंजीरें जकड़ी हुई जंजीर, और इस जंजीर से क्या है, आप बंधे हुए हैं। वेग का मतलब ये नहीं कि बस हवा का झोंका है, वेग का मतलब अब आपसे रुखा नहीं जा रहा, वो आपको बांध के रखा है इस संसार में, इसको बोलते हैं वेग, आ सकती, और जो आ सकती है वो जा भी सकती है। हाँ, कैसे जाएगी, भगवान के नामों का उच्चारण करने से, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो इस तरह से हमको समझना चाहिए कि जो व्यक्ति वेग को कंट्रोल नहीं करता वो देखने में तो लगेगा वाओ सोफिस्टिकेटेड मैन, पर वो है क्या, सोफिस्टिकेटेड एनिमल। बुरा मत मानेगा, शास्त्र कहते हैं द्विपद पशु, दो पैरों पे चलने वाला पशु, क्योंकि वो वही काम करता है जो जानवर करते हैं। वो भी जानवर को अगर पत्थर फेंक के मारो तो क्या करता है, हाँ सबको कुत्ता याद आ रहा है, कह रहे भोंकता है, अरे कोई जानवर तो कोई भी हो सकता है भाई, आवाज एक ही फैमिलियर है, तो मारो पत्थर तो वो भोंकता है। ऐसे ही अगर हम किसी के कुछ बोलने पर भोंकते हैं या कुछ कहते हैं तो हम क्या हो गए, हाँ जी नीचे का आवाज आ रही है कुत्ता, मैंने नहीं बोला। तो वाणी असुर के समान भी हो सकती है और सौर के समान भी हो सकती है। हाँ असुर, वाणी सुर के समान भी हो सकती है और असुर के समान भी हो सकती है। वाणी की आवश्यकता देखिए, बोलने के लिए आपको सिर्फ एक जीभ चाहिए और दो ओठ चाहिए, ओष्ठ स्पंदन मात्रेना, सिर्फ ओठों के स्पंदन से आवाज निकलती है। जीभ में हड्डी नहीं है और ओठ में भी हड्डी, बिना हड्डी के इतना सॉफ्ट आइटम, लेकिन इससे जो चीज निकलती है इतनी तेज धार, बस सामने वाले का कलेजा चीर के चली जाती है ना। तो आप सोचिए कि बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए क्या बोलती तो क्या बोलती तो आगे क्या मैं बोलूं सबने सुना ही नहीं ना, जानते हैं ना सब लोग। तो क्या बोलती तू, क्या मैं बोलूं, तो हमें सोचना चाहिए। ये फिल्में जो आती हैं ये भी शिक्षा प्रद है, वो हमें पूछ रहे हैं क्या बोलती तू, क्या बोल रहे रे अभी, और फिर क्या मैं बोलूं, क्या बोलना चाहिए। तो हमें सीखना चाहिए आज कि हमें क्या बोलना चाहिए। प्रभुपाद जी की बहुत ही विशेष कृपा है जानवरों के ऊपर, क्योंकि प्रभुपाद हर एक लेक्चर में अनेकों जानवरों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुत्ता, सुअर, मेढक। विशेष कृपा है ना, इतना प्रवचनों में इस्तेमाल होता है हमारे जानवर, इतना इस्कॉन के अलावा और कहीं जानवर इस्तेमाल नहीं होता। अब कृष्ण से कम का नाम कम आता है प्रवचन में, कुत्ता बिल्ली सुअर मेढक ज्यादा क्योंकि एक्चुअली अगली योनी वही है ना हम लोगों की, अगर हम वही कार्य करेंगे जो पशु करता है। इसलिए प्रभुपाद जी हमें बार बार सचेत करते हैं कि हमको अपनी वाणी को संभालना चाहिए। एक बार एक मेढक था, वो अपने घर से निकला, बारिश का जमाना था, बारिश का समय था, तो अपने घर से निकला तो उसके घर वाले बीवी बच्चे परेशान होते हैं, रात्रि में कोई आदमी जाए काम से तो बोले देखिए और ध्यान से जाइएगा, और बारिश का मौसम है बोलिएगा मत। बारिश में क्या बोलता है मेढक, हाँ जी तर तर, बोलिएगा मत, अभी काम के सिलसिले में जाना पड़ता है ना, तो स्पेशल एडवाइस हाँ उनके पत्नी बच्चों ने दिया, बोलिएगा मत। बोला ठीक है बोलूंगा नहीं, पर काम के लिए जाना है। उधर एक सांप सर्प ढूंढ रहा है, बहुत भूखा हूं, मेरा डिनर कब आएगा, मेरा डिनर कब आएगा। नदी के किनारे घूमा, जंगल में घूमा, कुछ खाने को नहीं मिला, एकदम अकाल पड़ा है। इतने में मेढक साहब आ गए, और मेढक साहब जो आए उनसे अपना वेग वाणी का कंट्रोल नहीं हुआ, और क्या बोल पड़े, टर टर टर। और सांप ने क्या किया, भक्षण कर लिया तुरंत। ऐसे ही जो लोग मंदिर में हो या मंदिर के बाहर हो, जिनसे अपनी ये जिह्वा कंट्रोल नहीं होती ना, कहते हैं कंट्रोल नहीं होता साहब, कंट्रोल नहीं होता सर प्रभु जी, और उन लोगों को सोचना चाहिए, अपराध रूपी सर्प इंतजार कर रहा है, भक्षण कर लेगा तो हमारे जीवन में अज्ञात सुकृतियां जो हमने अर्जित करी हैं वो कैसे दिन दिन करके कटती चली जाएंगी। अज्ञात सुकृतियां कैसे, जैसे हम जाइए मान लीजिए हरिद्वार गए नहाने के लिए, तो हरिद्वार नहाने गए और हमने बोला हर हर गंगे, पीछे से किसी ने बोला चुप्पे नंगे, तभी हमको अज्ञात सुकृति प्राप्त हुई। कितनी, 5 सिक्के 10 सिक्के, कुछ अज्ञात सुकृति परसेंटेज प्राप्त हुआ। फिर हम गए वृंदावन लस्सी खाने पीने कचौड़ी खाने, बांके बिहारी जाएंगे, बांके बिहारी जाएंगे, जाएंगे बांके बिहारी, तो वहां से भी कुछ सिक्के अर्जित करके लाएंगे, बुरा नहीं है जाना चाहिए। लेकिन जब तक जीवन में 50 सिक्के नहीं आएंगे तब तक जीवन में व्यक्ति भक्त नहीं बनता। मिनिमम परसेंटेज होता है ना 50% पास, तब 50 में भी भक्त नहीं बनता, उसके जीवन में एक वैष्णव का प्रवेश होता है। तो आपके जीवन में जब वैष्णव का प्रवेश हो और आकर बोले डीवाईएस करवा लीजिए, हाँ डिस्कवर योर सेल्फ सेमिनार, 6 दिन का सेमिनार है, इसमें हम सिखाते हैं हु इज गॉड, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, कहा हमारे साथ बुरा क्यों होता है, हम अच्छा करते हैं तो हमें बुरा क्यों मिलता है, ऐसे प्रचार करता है। तो उसमें 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं जो चुप रहते हैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और एक होते हैं जो उल्टा बोलते हैं, ए, चले चल चल 50 आते हैं तेरे जैसे चल। उसने क्या किया, 50 जो अर्जित की थी अज्ञात सुकृति, किसी के आने से उसके जीवन में 50 के कारण एक वैष्णव का प्रवेश हुआ, और बुरा बोल के उसने क्या किया, खन 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 30 पे पहुंचा दिया अपना। अब अगले 2-3 साल तक प्रवेश नहीं होगा वैष्णव का, फिर वो जाएगा हरिद्वार और कहीं चला गया परिक्रमा करने गोवर्धन, और घूम फिर के फिर तंग 50 पे पहुंच गया, फिर एक वैष्णव आएगा। हम लोग ना कार्तिक यात्रा जा रहे हैं, 31-1-2-30-31-1 कार्तिक यात्रा वृंदावन बरसाना और गोवर्धन जाएगी। अब जाकर वो व्यक्ति बोल रहा है चले हम बहुत वृंदावन गए, चल तू चल, फिर उसकी टन 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 खन, फिर 30 पे आ गया। अभी वो सोचो ये हाल तो उसका है जिसने चले चल कहा, और जिसने मंदिर में आके पूरी वाट लगा रखी है, भैया उसे तो मांगने से भी भिक्षा नहीं मिलेगी, उसके क्वाइन तो खत्म हो गए हैं। तो व्यक्ति को बड़ा खुश होना चाहिए जब कोई बोलता है हमारे बारे में उल्टा और उसका घटता है, खन 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 खन, तो किसका बढ़ रहा है, हाँ जिसके बारे में बोल रहे हैं उसका वाला नहीं आ रहा, उसको तो पता नहीं, एक वैष्णव दो वैष्णव कृपा ही कृपा। और लोग कहेंगे अबे ये तो और बढ़ गया आगे, मैंने इसकी बुराई करी है तो और आगे बढ़ गया, वो बढ़ेगा आगे, लेकिन जो कर रहा है उसका खन खन खन। और एक दिन दिखेगा प्रभु जी बहुत सेवा करते थे, प्रसाद की सेवा करते थे, इसकी सेवा करते थे, उसकी सेवा करते थे, लेकिन आप पता नहीं दिखाई नहीं देते क्यों, उन्होंने अपने हाथों से अपना बैंक अकाउंट खत्म कर लिया। इसलिए श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय 19वें श्लोक में आता है, स्वेतवरः उष्टाखरे संततः पुरुषं पशुं नायत् कर्णपथवेतो जातु नाम गदाग्रजः। तो इसमें चार जानवरों की चर्चा भागवतम के दूसरे स्कंद में हुई है। पहला है श्व, श्व कौन होता है, हाँ जी श्व, श्व श्वान जिसको बोलते हैं कुत्ता। विटह वराह, वराह कौन होता है, सुअर, पिग। पुष्ट ऊंट, और खरे खर कौन होता है, गधा। तो चार जानवर बताए गए, वो व्यक्ति जो संस्तुत पुरुषम पशु, वो पुरुष पशु के समान है, इन चार जानवरों के समान, जो क्या नहीं करता, नायत कर्ण पथ उपेत, उसके कानों में या किसी और के कानों में उसकी जुबान के द्वारा जातु नाम गदा ग्रज, जो भगवान की तारीफ नहीं करता, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते, इस तरह कदर कृष्ण का गुणगान नहीं करता, या फिर प्रभुपाद जी का गुणगान नहीं करता, हा? कि नमो ओम ब्राह्मण देवा, नहीं, नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने, अगर प्रभुपाद जी का गुणगान नहीं करता और भगवान का गुणगान नहीं करता, हमेशा किसका गुणगान करता है, हाँ जी गालियों का गुणगान करता है, माताओं का गुणगान करता है, माताओं की गालियों का इस्तेमाल करता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है, वो स्वविट वराह उष्ट और खरा, गधे के समान, ऊंट के समान है, हाँ सुअर के समान है। बताते हैं माता जो होती है वो अपने हाथ से अपने बच्चे का मल धोती है, लेकिन जो दूसरों की बुराई करते हैं और वो भी मंदिर में आके, वो व्यक्ति किस तरह होते हैं, वो अपनी जिह्वा से मल साफ करते हैं उस व्यक्ति का जिसके लिए वो कहते हैं। तो सोच लीजिए आपको क्या करना है, हाथ से मल साफ करना है या मुंह से करना है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, लोगों का मंदिर में आने के बाद एक चीज कदापि बंद नहीं होती, क्या, सब कुछ बंद हो जाता है, चाय बंद, मांसाहार बंद, टीवी देखना बंद, पर एक चीज चालू रहती, क्या, रेडियो। ये रेडियो चालू रहता है सदा, हाँ, और उस रेडियो से तरह तरह के एफएम निकलते हैं, 93.5, 98.3, हाँ, इस तरह से 94.5, हाँ, तो इस तरह के एफएम निकलते हैं, लेकिन कौन सा एफएम निकलना चाहिए पता है आपको, कौन सा एफएम निकलना चाहिए, 108, एग्जैक्टली करेक्ट, क्या नाम है आपका, सुमित प्रभु के लिए हरी बोल, 108 एफएम निकलना चाहिए, 108 मनकों की माला से क्या बोलना चाहिए,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
हाँ, अब परीक्षित महाराज ने और सुखदेव गोस्वामी से पूछा, भागवतम के अंत में आता है कि इस कलयुग में इतने दोष ही दोष हैं, हाँ, और हमको तो खासकर ज्यादा नजर आते हैं, हमें दूसरे में इतने दोष नजर आते हैं, तो हमारे लिए क्या उपाय है, तो उन्होंने कहा, कले दोषे निधे राजन, हे राजन कलयुग में दोषों की निधि है समुद्र, हाँ, कले दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुणा, एक महान गुण है, क्या, कीर्तनीय देव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजे, वो व्यक्ति मुक्त हो सकता है जो सदा अपने जुब्बा से जीवान से क्या बोलता है, भगवान के नामों को कहता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, कीर्तनियम सदा हरि, लेकिन हम हरि को छोड़कर ऑलवेज वरी, हमेशा चिंता करते हैं और ऊट पटांग बोलते हैं, और वो भी बोलते किसको है, भक्तों को, जो मंदिर में कहते हैं कौन है भक्त, वो जिसने एक बार कृष्ण नाम का जप कर लिया, एक बार क्या बोल लिया, हरे कृष्णा, भक्त है। उसकी अगर आपने थोड़ी सी भी अनगिनत अनवांटेड चर्चा करी तो फिर क्या होगा, अनवांटेड चर्चा के कारण आपके खन 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 अकाउंट डेबिट होना शुरू हो जाएगा। तो फिर बताते हैं जो हमारी वाणी है इससे हम तीन काम कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अपनी वाणी से हम तीन काम कर सकते हैं। पहला, अपनी वाणी से हम दूसरे का जीवन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, दूसरे का जीवन डिस्ट्रॉय समाप्त कर सकते हैं, अपनी वाणी से हम खुद का जीवन भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वेरी सिंपल, अपना जीवन डिस्ट्रॉय। और हम अपनी वाणी से एक और काम करते हैं जिसका नाम है वैष्णव अपराध। उसको रूप गोस्वामी ने कहा हाथी मत अपराध। वैष्णव का अपराध पता कैसा है? हाथी मत अपराध। जैसे हाथी, आपने नया नया पौधा लगाया और उससे हाथी प्रवेश कर जाए तो क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा बोलिए? हाथी प्रवेश कर गया, नया नया पौधा लगाया तो क्या होगा? उजाड़ देगा पूरा एकदम, तहस नहस। वैसे ही नया नया भक्ति का बीज लगा, अभी तो संडे लव फीस्ट में आना शुरू किया था, पहली बार कार्तिक यात्रा में रजिस्ट्रेशन कराया और फिर सोचने लगे आजकल तो सबको तिलक लगा देते हैं गेट पर ही, हम सब भी कौन हो गए? भक्त हो गए। अब हमें लाइसेंस मिल गया, किसी को भी कुछ भी बोलो क्या फर्क पड़ता है। तो बस फिर नाम अपराध खन 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 खन, और बस हाथी मत्था अपराध, भक्ति लता बीज समाप्त हो जाएगा उसी पल। निंदंती, निंदा करने वाला व्यक्ति जीवन में बहुत ही दुखों का सामना करता है अपने। तो हम इन तीनों पॉइंट्स को जरा डिटेल में श्रवण करते हैं कि किस प्रकार से हम अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। तो द्वारका में भगवान कृष्ण, ये वाले द्वारका में भी और गुजरात वाले में भी, भगवान जब सुबह उठते थे तो वहां पर किससे उठते थे पता है? अलार्म क्लॉक से। किससे उठते थे? ये आगे वाले सुन रहे, पीछे वाले सो गए, जो सो गए वो जा सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं। भगवान किससे उठते थे? अलार्म क्लॉक से। आपको मालूम है अलार्म क्लॉक थी, आपने बंद की थी। कहां से भगवान कैसे उठते थे? हाँ जी, मुर्गे की बांग से। उनका अलार्म क्लॉक था मुर्गे की आवाज, मुर्गे की वाणी। कैसे बोलता है मुर्गा? कुकड़ुकू। ये दो तो मेरे पास ही बैठे। तो मुर्गे की वाणी से भगवान उठते थे द्वारका में, इनकी वाणी से उठते थे यहाँ वाले द्वारका में, वहां अभी भी मुर्गे की वाणी। तो जो मुर्गे की वाणी होती है, एक मुर्गा था एक गांव में, बहुत ही सुंदर वाणी, और उस सारे के सारे मुर्गे पता क्या बोलते? क्या वाणी है आपकी यार, अमेजिंग यार, अमेजिंग, क्या कुकड़ुकू करते हो। एक ही कुकड़ुकू में कृष्ण उठ के बैठ जाते हैं, वाह क्या वाणी है तुम्हारी। तो बस सुनने लगा, और ये मुकुट ऐसे होता है ना, उसके सर पे ऑटोमेटिक मुकुट है, वो नीचे रहता है ना, सुन के खड़ा हो गया पूरा मुकुट खड़ा है। ओ बहुत ही मजे मजे में रहता था। हाँ ऐसे हमारे भी मंदिर में होता है, नए नए भक्त जुड़ते हैं, कोई बोल दे क्या आवाज है आपकी, सुन लो प्रभु जी कीर्तन तो सुन लो, या कोई अच्छा प्रवचन देता है मेरे जैसा मुर्गा, तो फिर हाँ खुश सोचने लगता है, वाह प्रभु जी क्या बोलते हैं आप, अच्छा माइक लेके बोलो ना जरा, बिना माइक के लोगों को सुनाई नहीं दे रहा, माइक लेके। तो इस तरह से जो लोग हैं, ऐसे एक मुर्गा था, उसकी वाणी से वो इतना प्रभावित था, इतना खुश रहता था अपनी वाणी से, कि एक दिन एक सियार आया जो मुर्गे को खाना चाहता था, जंगल से गांव में आया, और सारे के सारे मुर्गे सियार को देख के कहां चढ़ गए? ऊपर चढ़ गए, बिल्डिंग के ऊपर। अब ये सियार आया ना तो नीचे से फॉल्स ग्लोरिफिकेशन, झूठा तारीफ करने लगा, जैसे लेक्चर समाप्त होने के बाद आप भी मेरी कर सकते हो। तो फिर वो तारीफ करने लगे और बोलने लगे, और मुसियार आके बोलता है, अरे मुर्गे भाई आप ऊपर नीचे आओ, आपकी तो वो सुननी है मुझे बांग जिससे कृष्ण उड़ जाते हैं। कह रहा अच्छा आपको भी पता है, जंगल में भी सबको पता है? हाँ हाँ सबको पता है, आओ ना जरा। करता हुआ एक एक सीढ़ी नीचे आने लगा। और क्या जानते हो मेरे बारे में? मैंने सुना है आपके जो पंख फैला के जब आप नाच नाच के गाते हो ना, वो तो क्या अमेजिंग है, नरसिंह आरती तो आपकी, वाह 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 वाह। तो ऐसे ही अच्छा नमस्ते नरसिंह गाने लगता है व्यक्ति। तो फिर उसमें और नीचे अपने तारीफ में व्यक्ति भूल ही गया, एक सीढ़ी दो सीढ़ी तीन सीढ़ी नीचे आया ना, बिल्कुल सामने आमने मृत्यु के बिल्कुल नजदीक, तब वो कहता है आखिरी प्यादा, आंख बंद करके जब आप गाते हो ना, हरे वाह वो एक बार हो जाए। तो मुर्गा भूल ही गया कि ये सियार है मृत्यु है, हाँ वो अपने लगा था कर लिया। ऐसे ही वाणी का, जब हम अपनी वाणी से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, खुद ही कोई तारीफ करे ना करे,
हम खुद तो कर सकते हैं, हमारी वाणी जानते हो, सुने कभी हमारी सीढ़ी लेके जाना पर्सनल, हमारे कीर्तन सुने कभी स्पेशली, ऐसे करके जो सोचते हैं मृत्यु उनको सियार के रूप में आकर कभी भी हरण कर सकती है। तो हमको सोचना चाहिए कि वाणी इतनी इंपॉर्टेंट है। महाभारत के युद्ध में क्यों महाभारत का युद्ध हुआ? क्योंकि द्रौपदी और पांडवगण जब खांडव प्रस्थ में रहते थे तो उनको एक उन्होंने अपना महल बनाया था जहां पर पानी की जगह धरती और धरती की जगह पानी दिखता था। तो जब दुर्योधन देखने के लिए पहुंचा तो जहां पानी था दिखने में वहां उसने धोती ऊंची कर ली और जहां धरती दिख रही थी वहां वो पानी में डूब गया। जब डूबा तो द्रौपदी ने एक संवाद कहा, क्या कहा? अंधे का पुत्र, एक लाइन और लाखों अरबों लोगों की जान चली गई। महाभारत, महाभारत सोचिए जरा अपने बारे में, आपकी एक वाणी आपको कहां ले जाएगी? हो सकता है तहस नहस करा दे आपका जीवन। इसलिए हाँ, बोलने से पहले क्या सोचना चाहिए, क्या मैं बोलूं, सोच समझकर बोलना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे वो मूर्ख है जो बोलने से पहले सोचता नहीं है, बोलने से पहले। इसलिए बोलने से पहले सोचना चाहिए, मेरे बोलने से क्या इसके जीवन में फर्क पड़ेगा, मेरे बोलने से किसी के जीवन में क्या फर्क पड़ेगा, और तो छोड़ो इस बात को बोलने से मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा। जो बिना सोचे बोलता है वो कौन है? मूर्ख है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जिस प्रकार राजसु यज्ञ हो रहा था पांडवों का और वहां एक महान राक्षस पहुंच गए, उनका नाम था शिशुपाल, और वो अनगिनत गालियां देने लग गए। किसको? कृष्ण को। डायरेक्ट भगवान को गालियां दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होगा? भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और साथ में गर्दन फिनिश। तो आप ये मत सोचिएगा वहां द्वापर में कृष्ण थे, यहां तो मूर्ति है, गलती मत करिए, पता चला किसी दिन मंगला आरती आया तो चक्र आ रहा है, प्रभु जी गर्दन गिर गई आपकी। कट सकती है, कृष्ण तब भी थे आज भी हैं, विग्रह के रूप में कृष्ण समान रूप से विराजमान है, नाम के रूप में कृष्ण समान रूप से विराजमान है। जब भगवान के नामों का जप करते हैं, जो ध्यान पूर्वक नहीं करते हैं वो भी क्या करते हैं? शिशुपाल की तरह भगवान को गालियां देते हैं। कहते हैं नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नत नाम नामिनो। भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, इसलिए जब भगवान का नाम ले तो कैसे ले? ध्यान पूर्वक ले। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे किसी के बहकावे में आ जाते हैं, है ना। कुछ लोग तो भक्तों को जो प्रचार करते हैं उन्हीं की निंदा करने लग जाते हैं। सोचिए क्या मतलब, क्या कितने महान महान क्वालिटी पैदा हुई उनके अंदर। परीक्षित महाराज जब जंगल में घूम रहे थे और उनको पानी पीना था तो वो एक आश्रम में पहुंचते हैं, उस आश्रम में शमिक ऋषि रहते थे और उस शमिक ऋषि से उन्होंने कहा हे ऋषि मुझको पानी चाहिए, मैं राजा परीक्षित द्वापर का अंतिम राजा हूं, मुझे क्या चाहिए? पानी। जब पानी नहीं दिया तो शमिक ऋषि ने क्या, शमिक ऋषि को क्या किया? एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। डालकर जब वो चले गए तो उनका पुत्र श्रृंगी जो 11 वर्ष का था वो वहां आया और उसने देखा क्या मेरे पिता के गले में किसने सर्प डाला? राजा। कहते हैं राजा और भक्त से अगर कोई अपराध या दोष देखा भी जाए ना तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि वो एक महान पोजीशन पे है। एक भक्त समाज में धर्म को स्थापित कर रहा है और एक राजा जो कि समाज को चला रहा है, राज्य की चर्चा करता है, राज्य को पालन करता है। तो इस प्रकार से उसने क्या किया, वहां जाकर श्रृंगी ऋषि के दोस्तों ने बोला पता है तेरे पिताजी के गले में ना मरा हुआ सर्प डाल दिया इस परीक्षित महाराज ने, छोड़ियो मत। ऐसे हमको भी लोग आके बोलते हैं पता है प्रभु जी आपके बारे में क्या क्या बोल रहा था? अरे बोल रहा था तो अपना खाता खोल रहा था, मुझे क्या मतलब। अरे मेरे को क्या सोचना है, सोचेगा वो जिसे बोलना है, मेरे को क्या सोचना। तो इसलिए लोग ऐसे बोलते हैं प्रभु जी आपके लिए बहुत कुछ बोल रहा था, अच्छा फिर तो बढ़िया है, मेरा क्रेडिट बढ़ रहा था तो मुझे खुश होना चाहिए। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज को सोचे समझे श्रृंगी ऋषि ने क्या किया, हाथ में गंगा जल लेकर दोस्तों के कहने पर बिना सोचे समझे कि एक्चुअली हुआ क्या है, उसने कहा 7 दिन के अंदर तेरी मृत्यु हो जाए और सर्पों का सबसे बड़ा राजा तक्षक तुझे
डस ले। इस तरह का श्राप दे दिया किसको? परीक्षित महाराज जो कलयुग में आने से पहले द्वापर के अंतिम राजा हैं, जो पांडवों के वंशज हैं, जो कृष्ण भगवान के वंशज हैं, उन व्यक्ति को, उस व्यक्ति को ऐसा श्राप देना ठीक था? हम भी ऐसे ही करते हैं, सोचे समझे किसने क्या कहा उसकी जड़ तक जाए बिना। उसने ऐसे बोला, तेरी तो मेरी तो यही लगे रहता, तेरी मेरी, मेरी तेरी, एक कहानी। तो इस प्रकार से हमको सोचना चाहिए बोलने से पहले, और कैसा करें संग, ये भी वाणी में बहुत जरूरी है। एक सुंदर सी कथा आपने रामायण की सुनी है, जबकि कुछ समय में दशहरा आएगा तब राम कथा टीवी पे चलती है और रामलीलाएं भी चलती हैं। उसमें एक देवी थी केकई की फ्रेंड, उनका नाम क्या था? मंथरा देवी दासी। हमारे मंदिर में भी है, देखने में हो सकता है गोपी ड्रेस हो या साड़ी हो या प्रभु जी, हो सकता है तिलक और धोती कुर्ते में हो, लेकिन वो मंथरा की परंपरा में आते हैं, जो क्या काम करते हैं, आपके जीवन से भगवान को दूर कर देते हैं। मंत्रा ने क्या किया? केकई के जीवन से राम को दूर किया। क्या बोला? आपका जो वचन अभी पेंडिंग है ना, उसे मांग लो, मांग लो, मांग लो, ऐसे करके बोला। तो केकई ने दशरथ से ये नहीं सोचा कि मेरे पति मर सकते हैं, राम मेरे घर को छोड़कर जा सकते हैं, राम को निकालने को तैयार है, व्यक्ति अपराध कर लेंगे, अरे बहुत हो गई माला वाला, बहुत हो गया मंदिर, तेरी तो, अब तेरी तो बोलने से पहले सोचना चाहिए ना, वो चले जाएंगे जीवन से। ऐसी वाणी बोलिए, सोच के बोलिए क्या बोल रहे हैं। जब बोला गए कृष्णा, राम चले गए 14 साल के लिए, केकई को प्राप्त नहीं हुए राम, दशरथ को वापस नहीं मिले राम। एसोसिएशन, कैसा करें संग, उस संग के कारण जैसा करेंगे संग वैसा बनेगा ढंग, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए भोग लगा के प्रसाद खाइए और उन भक्तों का संग करिए जिनके साथ रहने से आपकी भक्ति में वृद्धि होती है। और अगर कभी ऐसा कोई व्यक्ति जाए जिससे आपका खाता घटता है, उसको दूर से कहना चाहिए, हरे कृष्णा बाद में मिलूंगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है, थोड़ा बाद में, थोड़ा बाद, बुरा मत माने, अरे सुनो तो वो वाली बाद में, ऐसे भाग जाना चाहिए। सुन लिया ना, चेतन महाप्रभु कहते हैं भक्त के पास तीन ही रास्ते हैं, या तो बुराई करने वाले को चुप करा दो, या फिर उस स्थान को छोड़ के भाग जाओ। लेकिन अगर भाग भी नहीं पाए और चुप भी नहीं करा, सुन भी लिया, बोला नहीं सुन भी लिया, तो उस व्यक्ति को आत्महत्या करनी ही पड़ेगी, और अगर नहीं करी तो उसको भगवान आत्महत्या के समान ही मानेंगे। सोचिए तीन ही ऑप्शन दिए, तो कौन सा चुनेंगे आप? हाँ जी, चुप रह के भाग जाओ, 9 तो आज 11 अक्टूबर है ना भैया, 9 तो 11 हो जाना चाहिए व्यक्ति को तुरंत। तो इस तरह से हमें सोचना चाहिए किसी को बोलने से पहले कि हम क्या बोल रहे हैं। जिस प्रकार से एक बार एक सियार था, सियार बहुत आता है हमारी कथाओं में, हाँ सियार इतना ताकतवर नहीं होता, एक नॉर्मल जानवर है जिसकी एक आवाज बड़ी पॉपुलर है, जो व्यक्ति मायापुर जाते हैं ना कलकत्ता, उनको सुनने को मिलती है। कैसे बोलता है? मुर्गे तो मिल गए थे, सियार का है, ओ मिल गया, सियार भी मिल गया, ऐसे करके बोलते हैं, है ना। ऐसे एक फिल्मी सिंगर भी है। तो जो सियार है, वो सियार क्या किया, एक दिन गलती से जंप करते 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 धोबी का एक नील पड़ा हुआ एक स्थान था, जहां नील रखा रहता है ना, उसके टब में अगर डुबुच करके गिरा, बाहर निकला तो देखा शीशे में, ओए कलर ही चेंज हो गया यार, ओए यार, आई कांट इमेजिन यार, नेरोलैक लग गया यार, घर की दीवारें रंगा ली यार, नेरोलैक लग गया। तो बस अब नेरोलैक लगते ही वो व्यक्ति क्या बन गया, उसने कहा ये अच्छा मौका है। सारे जानवर पूछने लगे जंगल के, आप कौन है, आप क्या खाते हैं? तो उसने भी सोचा पहचान ही नहीं रहे, तो चलो मार लो मौका, मौके पे चौका। क्या बोला? मेरा नाम है नीलू। क्या नाम है? नीलू। हसियार नहीं हूं मैं, नीलू। क्या खाते हो? मैं कुछ ज्यादा नहीं, ब्रेकफास्ट में शेर वगैरह खा लेता हूँ। फेमस, पूरे जंगल में पॉपुलैरिटी फैल गई उसकी। ऐसे ही कुछ लोग रंग बदल जाता है, इस्कॉन के गेट में आते ही ना, पहले इस्कॉन के मंदिर में कम आते हैं, बीपीटी शॉप में चले जाते हैं, वहां से गोपी ड्रेस का रंग लग जाता है, या फिर धोती कुर्ते का रंग लगते ही वो भौतिक जगत का व्यक्ति अपना नाम बदल लेता है। कौन है आप? जी दास हैं, दास। अब करेंगे बकवास देखना। दास हैं, दास असलियत में दास बने हैं। एक महाराज कह रहे थे, मैंने एक बार किसी महाराज को बोला, महाराज आई एम सर्वेंट, तो महाराज कहते हैं यू जस्ट से इट और यू रियली फील इट, आप सिर्फ बोल रहे हैं या सच में आप इसको अनुभव करते हैं अपने जीवन में। दास कहने से दास नहीं है, दास को एहसास करने से दास है। अभी पता चलेगा कितने लेक्चर सुनने के बाद दास बनते हैं। प्रसाद की प्लेट लेके ऐसे चलते हैं जैसे आर्मी की लड़ाई जीत कर आ रहे हैं। ओ यार मैं भी ले आया यार, तेरे में गुलाब जामुन, ओबे यार रह गया यार गुलाब, ये क्या यार, यार ये क्या चल रहा है। प्रसाद की प्लेट क्या पाली, ऐसा लगता है परमवीर चक्र मिल गया उसको। कब भीड़ इतनी आती है ना द्वारका में, लाइन में लगना पड़ता है यार, या पता नहीं क्या बोलते हैं, वाणी कैसी बोलनी चाहिए सोचना चाहिए। तो वो सियार आ गया और शेरों को पता चला ना, ऐसे मंदिर के जो शेर हैं पॉपुलर डिवोटी, जब उन्हें पता चला कोई नया है, कह रहा छोटे मोटे भक्त तो चबा डालता हूं मैं, अरे इसी से लेक्चर करवाओ। बिठा देते हैं उसको लाके सीनियर पोजीशन पे या कहीं पर बिठा दिया। अब वो अपना रंग दिखाता है धीरे 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 धीरे। तो ऐसे ही एक दिन सियार को बिठा दिया गद्दी पे और शेर पंखा कर रहा है और धाड़ भी रहा है बेचारा बिल्ली बनके और पंखा कर रहा है, और इधर से बाकी जानवर लगे हैं उसका माइक सेट करने के लिए कि अब सियार राजा प्रवचन देंगे। अब प्रवचन देने के लिए माइक सेट हो गया, पानी का गिलास रख दिया और सारे भक्त आकर बैठ गए, और मेरे जैसा कोई सियार जो था वो आकर बैठा प्रवचन देने के लिए। इतने में जो बाकी दोस्त थे ना, जैसे हमारे भी कुछ प्रेमी भक्त आगे बैठ जाते हैं आके, वो शोर मचाते हैं, तो उनके भी भक्तों ने शोर मचाया, सियार के भक्तों ने। उन्हें पता नहीं था कि ये हमारे बीच का है। वो बोले क्या, वो तो तारीफ कर रहे, वो तारीफ कर रहे थे। तो ये सियार भी क्या बोलने लगा, भूल गया मैं कौन हूँ, नीलू हूँ वो। और क्या बोलने लगा, ओ हाँ मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर, पहले गाता था ना मिले सुर मेरा तुम्हारा, आगे क्या है, तो सुर बने हमारा, तो सुर नहीं बनता तो असुर बने हमारा, राक्षस बन जाता है व्यक्ति, असुर सुर नहीं बनता। तो इस तरह से उस सियार को क्या किया, जो शेर पंखा कर रहा था ना, छोड़ पंखा साइड पटा खा गए उसको। ऐसे ही हमारे यहाँ भी कुछ भक्त होते हैं या भक्त बनने के प्रक्रिया में होते हैं, और उनको धोती कुर्ता या सेवा मिल जाती है। सेवा मिलने के बाद सब उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये प्रवचन देंगे, अब ये कुछ अच्छा बोलेंगे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और बोलते क्या है, ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए, और फिर उठाकर फिर क्या होता है, उनको भगवान यहाँ से साइड कर देता है। जीवन जीवन अनंत काल तक आपके जीवन में वैष्णव का प्रवेश ही बंद हो जाएगा। हाँ सोच समझ कर हमको बोलना चाहिए। हिटलर की वाणी इतनी पॉपुलर थी, इतनी पावरफुल थी कि हिटलर जब रेडियो पे बोलता था तो लोग हिटलर के लिए अपनी जान दे देते थे। हिटलर जब रोड पे चलता था तो उसके आगे जब गड्ढे पड़ते थे ना, गड्ढे उसकी गाड़ी के आगे, तो लोग सैनिक लेट जाते थे। वो कहता था गड्ढे हैं, तो सैनिक गिर जाते थे कार के आगे और उसके ऊपर से कार चली जाती थी। इतना पावरफुल वाणी, वाणी के अंदर कितनी ताकत है। प्राइम मिनिस्टर कैसे बन जाते हैं लोग, किसकी बदौलत, वाणी, लेक्चर दे देके दे देके दे देके। परीक्षित महाराज ने किस कारण, परीक्षित महाराज को किस कारण से भक्त बनने का मौका मिला, सुखदेव गोस्वामी की वाणी से। अर्जुन को भक्त बनने का मौका किसके कारण मिला, कृष्ण की वाणी से। तो ये वाणी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में चैतन्य चरितामृत में एक लीला आती है, उसमें चैतन्य महाप्रभु एक बार एक भक्त थे। ये वाणी का प्रयोग कौन कर रहा है, थोड़ा दूर ले जाए बच्चे को, उनको बोलिए थोड़ा या तो बाहर चले जाए या चुप कर। तो चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे, एक भक्त, उनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य, आपने सुना होगा। सार्वभौम भट्टाचार्य इतने 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 महान भक्त थे, लेकिन उनको महाप्रभु ने स्वयं दर्शन दिया। और पता है कौन सा दर्शन, षडभुज रूप, छह हाथों वाला रूप। चार तो आपने देखे हैं, छह नहीं देखे होंगे। दो हाथ में बांसुरी, दो हाथ में धनुष बाण, और दो हाथ में डंडा और कमंडल। छह हाथों वाला रूप छठभुज रूप सार्वभौम भट्टाचार्य को दिखाया। ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक दिन महाप्रभु को अपने घर में प्रसाद के लिए बुलाया। तो हमें भी लोग भक्त बुलाते हैं प्रसाद के लिए और फिर एक्स्ट्रा खिलाते हैं, ये खा लीजिए ये खा लीजिए। तो ऐसे ही महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य खिला रहे थे, थोड़ा गुलाब जामुन, थोड़ा रसमलाई, थोड़ा जलेबी, थोड़ा ये थोड़ा वो। लेकिन खाते खाते महाप्रभु कह रहे थे, नहीं नहीं मैं तो एक सन्यासी हूं, सन्यासी के लिए तो थोड़ा दाल थोड़ा चावल एक रोटी बस। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले, नहीं नहीं आप तो कौन है, स्वयं कृष्ण है, जय ही गौरा जय कृष्ण से ही जगन्नाथ, वही गौरंग महाप्रभु हैं, वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ है। जब आप जगन्नाथ के रूप में आते हैं तो आपकी उंगलियां थकती नहीं खाते खाते। जगन्नाथपुरी में भगवान सारा दिन सारा टाइम भोग लगता है, सिर्फ दो तीन घंटे सोते हैं। जगन्नाथपुरी में कोई जाएगा तो भूखा नहीं रहता, अन्न प्रसाद बिखर के फ्री मिलता है आपको खाने के लिए। और कृष्ण यहाँ पर द्वारका में अनगिनत भोग लगते हैं, आठ पहर भोग लगता है भगवान को। कभी भी आप आते हैं संडे को तो भूखे रहते हैं, है कोई ऐसा भूखा जाता हो, जाता हो तो बोलिएगा मत। तो फिर तो गौरंग महाप्रभु वो सन्यासी के रूप में इसलिए वो कम प्रसाद खाते थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के एक दामाद थे जिनका नाम था क्या, अमोघा। क्या नाम था? अमोघा। और वो नेगेटिव कैरेक्टर है शास्त्र में, इतना नेगेटिव कि उसे देखा ही नहीं जाता किसी का गुण, वो सिर्फ एक ही चीज देखता है, क्या अवगुण। गुण नहीं दिखता, अवगुण। हम भी ऐसे ही चश्मा लगाते हैं कभी कभी, कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है। भगवान में 64 गुण हैं और हम भगवान के अंश हैं। भगवान कहते हैं, मामेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्राणि प्रकृति स्थानि करिष्यति। हम सब भगवान के अंश हैं, अगर भगवान में 64 गुण है तो हमें कुछ तो होंगे। वो गुण देख लो ना यार, किसी के गुण नहीं दिखते, अवगुण ही अवगुण जो मिसिंग है उस पार्ट को हम पूरी लाइफ देखते हैं, इसीलिए हमको सारे लोग गलत नजर आते हैं। जिस दिन हम उनके एक कुछ गुण देखने लगेंगे सब पॉजिटिव नजर आएगा। तो अमोघा को नेगेटिव नेगेटिव नजर आता था और अमोघा ने क्या किया, गलती से चैतन्य महाप्रभु जब प्रसाद दे रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य ने दरवाजा बंद रखा है और एक स्टिक लगा रखी है डंडा, कहीं अमोघा ना आ जाए उनका दामाद। और अचानक से अमोघा एकदम से आ जाता है क्योंकि उनका ध्यान हट जाता है, वो महाप्रभु को देखने लगते हैं। ओ महाप्रभु, इतने में अमोघा गेट में एंटर करता है विलन की तरह और बोलता है, ए सन्यासी हे देखना जरा जलेबी रसगुल्ले, वाह जी वाह बड़े सन्यासी देखे तुम्हारे जैसे। ओ सर्वम बटे जा, चुप चुप चुप। अरे वाह 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 भाई, पेट भर के खाओ खाओ, फ्री का मिल रहा है, खाओ खाओ। अपराध पे अपराध, वो भी स्वयं कृष्ण जो गौरंग महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए कलयुग में 500 वर्ष पूर्व, अनेकों अपराध। सार्वभौम भट्टाचार्य हाथ में डंडा लेकर जिससे गेट रोका था, पीछे पीछे भागते हैं अमोघा के, अमोघा रुक जाओ, मैं अभी तुम्हें डंडे से इतना मारूंगा कि तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारा जीवन ले लूंगा, ऐसे दामाद से अच्छा है कि मेरी बेटी विधवा रहे, लेकिन एक वैष्णव अपराधी मैं अपने जीवन में नहीं रख सकता हूं, एक भगवान का अपराधी अपने जीवन में नहीं रख सकता हूं। उसके पीछे डंडा लेकर भागते हैं, लेकिन इतने में क्या होता है कि वो वहां से फरार हो जाता है, भाग जाता है। लेकिन देखिए अपराध का फल क्या हुआ, अमोघा को हैजा हो जाता है, कॉलरा। और आज से 500 वर्ष पूर्व कॉलरा का कोई इलाज नहीं था और वो उल्टियां कर रहा है, तड़प रहा है, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो, मैंने अपराध किया, मुझे बचा लो, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं होता। तब सार्वभौम भट्टाचार्य के बहन के एक पति थे, उनका नाम था गोपीनाथ आचार्य। गोपीनाथ आचार्य को पता चला कि उनको क्या हो गया है, हैजा हो गया है, और सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी ने इतने दिनों से कुछ खाया नहीं है और रो रहे हैं कि हमसे क्या हो गया, अपराध हो गया। एक को हमने घर में बुलाया भगवान के भक्त भगवान को और हमने उनके अपराध कर दिया चरणों में, तो फिर भगवान के भक्तों ने भोजन नहीं लिया, खाया नहीं कुछ भी सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी पत्नी ने। तो फिर गोपीनाथ आचार्य ने जब महाप्रभु को बताया, महाप्रभु कौन है, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। नमो महावदन्नाय, वदन्नाय मतलब होता है करुणामय अवतार, और महावदन्नाय मतलब उनसे ज्यादा कृपालु इस संसार में कोई नहीं है। अपराधी को भी क्षमा करने के लिए तत्पर महाप्रभु वहां पहुंच जाते हैं। और जाकर उस अमोगा के हृदय में हाथ लगाते हैं और कहते हैं तुम्हारा कॉलरा ठीक हो जाएगा। लेकिन अमोगा रोने लगता है, मुझसे अपराध हो गया महाप्रभु, मुझे बचा लो, जीवन दान दे दो मुझको। कहते चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस हृदय में कृष्ण को रखना चाहिए उसमें तुमने किसको रखा? द्वेष को रखा, और द्वेष ने तुम्हें हैजा दिया। तो ये मत सोचिए कोई चैतन्य चरितामृत की कथा है, अब नहीं होगा। भगवान आज भी ऑल्टर में वही है, भक्त भगवान के वही है, और भगवान के भक्तों को और भगवान को बोलने वाले को आज भी हैजा हो सकता है। कॉलरा चला गया क्या? कॉलरा भी है, आज हो सकता है। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए हमसे कभी गड़बड़ ना होए। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में कहते हैं, सही ते पाषाणी वैष्णवर निंदर दोषे, नाम अपराधे माजी पड़े कृष्ण रोषे। जो व्यक्ति पाषाणी है, जो वैष्णव की निंदा करता है, नाम अपराधे माजी पाइया, वो व्यक्ति को जो नाम का अपराधी है कृष्ण रोषे। रोषे मतलब क्रोध, गुस्सा करते हैं कृष्णा। आपको तो लगता है मैं नाम जलाऊं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन उसके बाद, उस दो घंटे के बाद आपने अगर भक्त की बुराई करी तो कृष्णा क्या करेंगे? रोषे। हाँ, आगे कहते हैं, वैष्णवेरे मुखे नाम महात्म प्रचार, से वैष्णव निंदा कृष्ण नहीं सहे आर। जो भक्त महात्मा भगवान के प्रचार में लगा है, भगवान की कथाओं में लगा है, उस व्यक्ति की निंदा करना वैष्णवेरे निंदा कृष्ण नहीं सहे आर, और सहने करेंगे। भक्त हो सकता है छोड़ दे, लेकिन भगवान चक्र छोड़ दे, और फिर शिशुपाल की तरह उस व्यक्ति की गर्दन, तो हो सकता है गर्दन ना कटे लेकिन वो व्यक्ति मंदिर से सदा सदा के लिए पलायन कर जाता है। फिर लोग क्या करेंगे, वो जैसे वॉशिंग पाउडर का ऐड आता है ना, ढूंढते रह जाओगे। होता है ऐसा जीवन में, बहुत भक्त हमने देखा आते थे, अभी 8 साल तक आए, 9 साल आए और आने बंद हो गए। प्रभु जी आजकल आते नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ गई है घर में। वो प्रॉब्लम लाया कौन? खुद। कृष्ण के जीवन में आने से सारी प्रॉब्लम चली जाती है, फिर क्यों आई? हाँ, वैष्णवेरे मुखे नाम महात्म प्रचार, से वैष्णव निंदा, उस वैष्णव की निंदा कृष्ण नहीं सहे यार, उसकी निंदा कृष्ण सहन नहीं करते। हाँ, कहते हैं नष्ट प्राय दोषे लय करे अपमान, ऐसे व्यक्ति का जो अपमान करता है, यम दंड कष्ट पाए से सब अज्ञान। अज्ञानी व्यक्ति अज्ञानता में अनेकों अनेकों बुरी बुरी बातें बोलता है, उसे मालूम नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके लिए बोल रहा हूँ, उसको क्या होगा अज्ञानता में? यम दंड, यमराज का दंड, कष्ट पाए, ऐसे ऐसे कष्ट पाएगा जीवन के रहते रहते, और जीवन के LIC कहती है ना, जीवन के साथ भी और जीवन के, तो ऐसे ही निंदा करो और फिर अभी भी कष्ट पाओ और उसके बाद भी, अभी भी कष्ट पाने के बाद लोग रियलाइज नहीं करते हैं, आके बोलते हैं बहुत कष्ट है जीवन में, रियलाइज करो आप बहुत अपराध कर रहे हो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेटस पे। उस भक्त से जाकर क्षमा याचना करो, मैंने आपके लिए बुरा सोचा, मैंने आपके लिए बुरा बोला, कृपा मुझे माफ कर दीजिए। सिर्फ भक्त ही एक ऐसा है जिसके प्रति निंदा करी वो आपको माफ कर सकता है, अन्यथा कृष्ण में भी वो शक्ति नहीं कि अपराधी को माफ कर दे। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्याजम मामेकम शरणम व्रज, अम त्वम सर्व पापाभ्यो मोक्षास्मि मा शुचः। भगवान ने कहा मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा, अपराधों से नहीं, अपराधी को कोई मुक्ति नहीं है। हाँ, तो साधु कौन है? कैसे समझ में आएगा कौन व्यक्ति साधु है और कौन व्यक्ति स्वाधु है? स्वाधु होता है ना, टेस्टी फूड खाने आता है, तो कहते हैं अन्न देव अन्न शास्त्र ना करी निंदन। जो व्यक्ति अन्न शास्त्रों की निंदा नहीं करता, अन्न देवताओं की निंदा नहीं करता, अन्न देव अन्न शास्त्र ना करी निंदन, ना मेर आश्रय लय शुद्ध साधु जन। उसने सिर्फ अपने जीवन में शुद्ध नाम की शरण ग्रहण करी है और रात दिन सिर्फ भगवान के नामों का उच्चारण करता और बोलता रहता है
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
और आगे बताते हैं कि कई लोगों को डाउट होता है, क्या साधु तो समझ में आया ना आपको कौन है, जो अन्य शास्त्रों की निंदा नहीं करता, अन्य देवी देवताओं की निंदा नहीं करता, लेकिन ये बताता है कि कृष्ण परम भगवान है और भगवान के नाम का आश्रय लेता है। हो सकता है आस्था चैनल पे बड़ी बड़ी बातें करने वाले बाबा जी हों, लेकिन वो अगर हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं करते तो वो साधु नहीं है। तो फिर साधु खाली ऑरेंज कपड़ों में होता है या व्हाइट में भी हो सकता है? तो चैतन्य चरितामृत और हरिनाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, यार यते नाम रति सही तथा वैष्णव वैष्णव रे क्रम या मते अनुभव। जिसकी नाम में रति है, जिसने अपने जीवन में समझ लिया है कृष्ण नाम के अलावा और कुछ है ही नहीं, वो व्यक्ति वैष्णव हो सकता है। अन्यथा बड़ी बड़ी बातें करने वाला, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हमसे पूछो किसी दिन प्रवचन, हम देंगे प्रवचन। जो व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है वो व्यक्ति, लेकिन नाम में उसकी रुचि नहीं है, वो व्यक्ति साधु नहीं है। तो फिर साधु कौन है? सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, कौन है? सही साधु ग्रस्त है अथवा सन्यासी, ताहारा चरण रेणु पाई ता प्रयासी। हो सकता है, हरे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, वो ग्रस्त भी हो सकता है। ये साधु ग्रस्त है अथवा सन्यासी, हो सकता है सन्यासी भी हो। ताहारा चरण रेणु पाई ता प्रयासी, अगर उसकी चरण रज मिल गई, चाहे वो ग्रस्त हो या सन्यासी, लेकिन उसकी एक क्वालिटी होनी चाहिए, क्या? नाम में रुचि, नाम में रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा, ऐ वैष्णव लक्षण, ये वैष्णव के लक्षण है, नाम में रुचि होनी चाहिए। अभी तो नाम में रुचि नहीं है, नाम लेने के बाद सोचते हैं अरे कब ये माला समाप्त होगी, कौन सा टाइम आएगा, 16 बना पूरी होंगी, फिर टांग देते हैं ऊपर, अभी कल देखूंगा तुझे। हाँ, कई लोगों के घर में जब टेंशन आती है ना तो पूछो आप लोगों ने कुछ खाया, हाँ प्रोजी थोड़ा बहुत, माला की नहीं, नहीं माला नहीं, क्यों? हमारी फिस्टिंग चल रही है, माला की फास्टिंग चल रही है। माला ऊपर फास्टिंग पे और हम लोग फिस्टिंग। भगवान के नाम से लोग इतना दूर भागते हैं, मृत्यु हो जाती है ना। एक बार हम एक जगह गए थे, वहां किसी की मृत्यु हो गई, तो लोगों को बोला, बोलिए हरे कृष्णा, कह रहे नहीं नहीं चुप करो भगवान का नाम मत लो, हमारे यहाँ किसी की मृत्यु हो गई है। घर में गए, पानी मिलेगा? कह रहे हाँ पानी मिल जाएगा। अंदर गए, टीवी चल रहा, उसमें शाहरुख खान की पिक्चर चल रही। टीवी को कोई अशुभ नहीं है, टीवी के लिए कोई सूतक नहीं है, सारा सूतक कहां लग गया? नाम में। लोगों के घर में मृत्यु होती है ना, मुझे फोन करते हैं, अरे कृष्ण प्रभु जी हमारे घर किसी की डेथ हो गई है। मैंने कहा हाँ, नाम तो नहीं लेना होगा आज, कैसे भी करके छूट जाए, कौन सा दिन है, पकड़ा दिया हमारे हाथ में। नाम में जिसकी रुचि नहीं, वो व्यक्ति साधु ही नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन बेकार है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? सदा भगवान के भक्तों का संग और भगवान के साधु का संग, जो क्या करते हो, भगवान के नामों में रुचि रखते हो। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मज्जित मद्गत प्राणाम बोधयंतम परस्परम कथयंतस्तमाम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्तों को क्या बोलना चाहिए? अभी प्रभु जी आपने टॉपिक तो लिख दिया, क्या बोले, तो क्या बोले, कैसी वाणी बोले? तो ऐसी बातें बोलनी चाहिए, भगवान कह रहे हैं कथयंतश्च माम नित्यम, मेरी कथा करनी चाहिए। एक दूसरे से मिले ना, अरे बोल सुमित प्रभु आज आपने क्या सुना बताओ ना, आज मैंने ना आज द्वारका लीला सुनी, अच्छा और आपने? मैंने आज ना वृंदावन लीला सुनी, चलो चलो बैठ के सुन देना। बैठ गए, प्रसाद खा रहे, लीला सुन ली, हो गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आनंद भी आ गया। और हम क्या करते हैं पता है? पता है तुमको मंदिर में क्या चल रहा है? नहीं नहीं आओ बताता हूँ। भैया हो गया दोनों का, वो भी पाखंडी तुम भी पाखंडी। तो इसलिए कहते हैं ऐसे लोगों का संग हमको त्याग देना चाहिए। सदा क्या करनी चाहिए? कथयंतश्च माम नित्यम, जो आपको भी आनंद प्रदान करेगी और कृष्ण को भी आनंद प्रदान करेगी, है ना। रूपा जी ने कहा कुछ लोग मौन व्रत धारण करते हैं, अब पता है बहुत हो गया इस मंदिर का ना, बहुत सुन लिया, बोलूंगा ही नहीं अब मैं, बहुत सुन लिया, बहुत बोल लिया अब नहीं। तो प्रभुपाद जी जब एक बार कुरुक्षेत्र गए, तो वहां पर कुरुक्षेत्र में सारे भक्तों ने आके बताया, प्रभुपाद एक मौनी बाबा है, मौनी बाबा वो ना यहाँ पे चेन लगाते हैं और ताला डाल के रखते हैं, 10 साल से बोले नहीं है, वाह क्या तपस्वी है। प्रभुपाद जी ने कहा उनसे पूछो भूख लगती है तो क्या खाते हैं, तो उन्होंने लिख कर जवाब देते थे, भूख लगती है तो क्या खाते हैं, कह रहा 10 दर्जन केले। तो है ना, अब सोचो बोलना नहीं है लेकिन भोग की इच्छा विराजमान है। तो प्रभुपाद ने कहा सबसे बड़ा मौन व्रत क्या है, पता है? सदा कृष्ण की चर्चा करते रहना। जा रहे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है ये तारे देश। अपने ही द्वारका में रहते रहते जिसको मिले उसको क्या बोले, भगवान के नामों की चर्चा करें। तो प्रभुपाद ने कहा कि वो आखिरी दिन होगा जब आप लोग मुझे बोलने नहीं देंगे, इसलिए भक्त को बोलने देना चाहिए। आप लोग हमें बोलने देते हैं, हम भी आपको बोलने देंगे, बोलिए। तो प्रभुपाद ने कहा कि मुझे बोलने दीजिए। तो प्रभुपाद सुबह मॉर्निंग वॉक से लेकर भागवतम में बोलते थे, मॉर्निंग वॉक में बोलते थे, फिर मीटिंग में बोलते थे, फिर आफ्टरनून में ट्रांसलेशन करते थे, फिर रात को गीता में बोलते थे, फिर रात को ट्रांसलेशन में बोलते थे, और फिर एक घंटा सोते थे, फिर सुबह उठ के मंगल आरती में बोलते थे, फिर उसके बाद भागवतम में बोलते थे, मॉर्निंग वॉक बोलते 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 कृष्ण के बारे में बोलते बोलते। ये सबसे बड़ा मौन व्रत है, इस जुबान से कृष्ण के अलावा और कुछ निकलना ही नहीं चाहिए। जब निकलेगा तो क्या निकलेगा, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 राम। इसीलिए प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है, क्या है प्रणाम मंत्र, गौरवाणी प्रचारिणे, गौरंग महाप्रभु की वाणी का प्रचार कर रहे हैं। तो हमें जीवन में गौरंग महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना चाहिए। इतनी ताकतवर हमारी वाणी है, जैसे मेरी तो खराब हो गई है, ऐसे ही मैंने इसका सदुपयोग किया है लेकिन फिर भी दब गई है, हो सकता है कुछ दुरुपयोग भी किया हो। तो आप लोग अगर इसका दुरुपयोग करेंगे तो आपकी वाणी किसी के जीवन में प्रकाश भी ला सकती है और किसी के जीवन में, अभी आपको डिसाइड करना है, आप दूसरों के जीवन में प्रकाश लाना चाहते हैं, अपने जीवन में प्रकाश लाना चाहते हैं, या फिर आप दूसरों के जीवन में अंधकार लाना चाहते हैं, या फिर अपने जीवन में अंधकार लाना चाहते हैं। हरि भक्ति विलास शास्त्र में लिखा है, ओष्ठ स्पंदन मात्रेण कीर्तनम तु ततावरम। ओष्ठ ओठो के स्पंदन मात्रेण, इसके हिलने से क्या होगा, कीर्तनम तु ततावरम, इससे क्या करना चाहिए, सदा कीर्तन करना चाहिए। तो एक छोटी सी कथा सुना के हम समाप्त करेंगे। एक कथा कि एक बार एक स्थान पे एक कुंड था छोटा सा, और उसमें हरे श्री रुक्मणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौर निताय श्रील प्रभुपाद की जय। तो वहां पर एक कुंड था और उस कुंड में बहुत सारी मछलियां रहती थी और कछुए भी रहते थे और वहां पर दो सारस भी रहते थे। तो एक बार पता चला कि इस कुंड की सारी जो शक्ति है वो जाने वाली है और इस कुंड का जो पानी है वो समाप्त होने वाला है। तो कछुए सोचने लगे अब तो हम क्या होंगे, मर जाएंगे। तो उन्होंने सारस को पूछा, सारस बोल रहे थे पता है पड़ोस वाले एक तालाब में बहुत सारा पानी है, बहुत सारी मछलियां रहती हैं और वो शहर से कोसों दूर है, तो वहां चलते हैं और वहां जाकर क्या करेंगे, जीवन जिएंगे। तो कछुआ बोला मुझे भी बचा लो। तो दोनों हंस ने बोला हम तुम्हें भी ले चलते अगर तुम्हें उड़ना आता। तो बोला एक काम कर सकते हैं, एक डंडी पकड़ते हैं, उस डंडी के इधर तुम पकड़ना, इधर दूसरा पकड़ेगा। और कछुए ने बोला मैं बीच में पकड़ लूंगा, और फिर बीच में पकड़ कर मुझे तुम इस तालाब से उस तालाब में ले जाना। जब सारस उड़ने लगे तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दिया, एक उपदेश, एक क्या दिया, क्या दिया, उपदेश, क्या उपदेश दिया, बोलना। तो कछुआ सारस के डंडे पकड़कर उड़ने लगा। अब कछुआ लिफ्ट ले रहा है एरोप्लेन की तरह, और इतना पहुंचा नीचे से कुछ भक्त बच्चे खेल रहे थे पत्थर से, तो बोलते देख कमाल हो गया, कछुआ भी उड़ता है, वाह जी वाह, इसकी चाल तो देखो, ओए ओए उड़ने लगा, वाह जी वाह। कछुआ लोग अगर मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं मिला होता ना चुप रहने का, अभी बता देता, गिर जाऊंगा, डरने लगा। तो चुप रहा, एक गांव निकला, दूसरा गांव, दूसरे गांव में ओए 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 दुख 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 दुख, कौवा ये कछुआ चले हंस की चाल। सारस बोलना नहीं, सारस मना कर रहे हैं और कछुआ तत्पर है बोलने के लिए। तीसरा गांव आया, कछुए से रहा नहीं गया, कछुआ बोला तेरी तो धमा कहां गिरा नीचे और तुरंत मर गया। सारस बोले हमने कहा था ना, क्या बोला? नहीं। तो हमारे जीवन में सारस कौन? एक सारस कृष्ण और दूसरे सारस प्रभुपाद गुरु। इसके बीच में एक डंडी, कौन सी? महामंत्र की डंडी। कछुए को बोला, हम कछुए को बस इसको पकड़ के रखना और बोलना, और हम उस डंडी को छोड़ करके जब इधर के लोगों को, उधर के लोगों को, पीछे के लोगों को, आगे के लोगों को देखने लगते हैं और बोलने लगते हैं तो क्या होता है? धन से नीचे गिरते हैं और तहस नहस हो जाता जीवन। इसलिए सब कुछ छोड़िए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा गला रुक गया। तो अभी हम यही समाप्त करते हैं। श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की, पदे पावन श्रील प्रभुपाद की, संडे लव फेस्ट कार्यक्रम भक्तों की, निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल।